اپنے ملک سے محبت رکھیں. یہ پارٹیاں آنی جانی چیزیں ہیں, ہم بندے آنے جانے ہیں, کوئی پرماننٹلی یہاں نہیں بیٹھا ہوا. اجازت دیجیے اگلی ملاقات تک, اللہ حافظ.
WTOR 770 AM جنگس ٹاؤن ٹورانٹو.
کاش پیسے گھر بھیجنا آسان اور سویدھا جنک ہوتا. سی آئی بی سی گلوبل منی ٹرانسفر کے ذریعے آپ کے پریوجن اسی دن کیش پک اپ سروس کے ساتھ لوکل منی گرام ایجنٹ سے کیش اٹھا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کیش اسی دن لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ دن اور یہ دن. اگر آپ خوشیاں بانٹنے جا رہے ہیں تو $0 سی آئی بی سی ٹرانسفر فی کے ساتھ کیش پک اپ سروس کے ذریعے بھیجیں. CIBC.com/cashpickup پر جائیں. شرطیں اور سی آئی بی سی فورن ایکسچینج ریٹس لاگو. CIBC امبیشنز میڈ ریئل.
ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن. آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے. ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک, ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو. نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ. ڈرائیو تھرو فیسلٹی. ون اسٹاپ شاپ. اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی. کوئک ٹرک لیو 519-622-0660.
کیا آپ کے گھر اور آٹو انشورنس کی رینول ہو رہی ہے؟ کیا آپ درست انشورنس کوریج کے لیے اچھی قیمت کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آپ کو آل اسٹے ایجنٹ ایجنسی کے راجہ مدثر کو 6472903773 پر کال کرنی چاہیے. آج ہی کال کریں اور آپ دو کاروں اور ایک گھر کی انشورنس کراتے وقت تقریباً $1,775 کی بچت کر سکتے ہیں. راجہ مدثر 6472903773. آل اسٹیٹ کے ساتھ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ٹرمس اینڈ کنڈیشن اپلائی.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجیے سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 Kennedy Road, برامپٹن, 9058747471.
770 AM دیا نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسز الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشیل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com. لوکل نمبر 6478724900.
چاندنی
بینکویٹ ہال.
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye, 437-218-8734, chandnihalls.ca.
یوں ہی چلا چل رہی, یوں ہی چلا چل رہی پلاننگ فار ویکیشن.
ہوائی ٹکٹ کی قیمتیں تو آسمان کو چھو رہی ہیں.
ارے میرے لیے کوئی ڈیل تو دیکھو.
اور مشین کے بجائے ریپرزینٹیٹو سے بات کریں.
ہے نا ایئر ونگ ٹریول, ہول سیل ریٹ, پاکستان, انڈیا اور مڈل ایسٹ, ایوری ویئر ویئر یو وانٹ ٹو ٹریول.
ایکسلنٹ
پرسنلائزڈ ٹریول سولوشنز, افورڈیبل, ایزی اینڈ ڈسکاؤنٹڈ ایئر فیئرز.
Air Wing Travel and Tours,
905-272-2300.
Stress چاہے لکھ دا ہوئے یا ککھ دا, اس زندگی مشکل کر دیتا ہے. باقی باتیں ایک طرف, آپ کے فائنینشل سٹریس کا حل ہے شیراز شفیق, جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز. لاسٹ منٹ کلوزنگز ہوں یا ڈیفیکلٹیز, سبھی کے لیے شیراز شفیق. 416-502-8000, لائسنس نمبر 10845, انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ.
دانتوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کرانی ہو ڈینٹل کلیننگ, ڈاکٹر فیاض اینڈ ایسوسیٹس آپ کی پہلی چوائس. paradontics, orthodontics, dental implant, cosmetic dentistry and much more. Warm and friendly atmosphere, जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं. आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं. स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं. अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 9052325678 मिसेस सागा 4167579999 स्कारब्रो.
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ. हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप तल्लुक आते हैं इनके. आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त दिया जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे. हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं. बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना. कैसे बचा सकते हैं, कॉल हैरी सॉन Now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
BMK proudly brings you Big Bigwig Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street West Midway. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day one will feature the incredible and legendary live in concert with full band. Enjoy free parking and admission. For sponsorship, booth booking, and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bnkevents.com.
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा.
कौन से काम?
वही बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ.
बस इतनी छोटी सी बात. पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही. दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी.
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ.
जी जी बिल्कुल. पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन. पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879. दैट इज 9057907879.
भाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला.
ओहो सल्ला भैन जी, कनाडा आ गए तुसी. इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा.
ए आ जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप. नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटा, बाटियां सब कुछ मिलदा. साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहनिया सोहनिया रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है. एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ.
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ.
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West, Brampton. Ya call karo 905-450-2828. 905-450-2828.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस. ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका. 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा यूनिट 3. ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800.
क्या आप, आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 4168945872.
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ.
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 4168945872.
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों.
अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी।
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है, 786 मूविंग प्लस।
अच्छा वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस, स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं। मूविंग एंड डिलीवरी, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, 24 आवर सर्विस, 7 डेज अ वीक, आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी, फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए, 416-786-6000, 416-786-6000।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान ताज़ा आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक तमाम सामईन को जो 770 AM डायल सुन रहे हैं। जनाब मैं म्यूजिक बिल्कुल प्ले करूंगा, मैंने कहा सलाम कर लूं पहले और न्यूज जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो शाहजी जी स्टूडियो में आ गई, पहले म्यूजिक और उसके बाद वेलकम बैक तमाम सामईन को जो 770 AM डायल पर प्रोग्राम सुन रहे हैं साजो आवाज और हमें ई आवाज टीवी पर भी देख रहे हैं। जनाब मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और मेरे साथ जुड़ गई हैं शाजिया मलिक साहिबा। जनाब अब कुछ ही देर में हम आपको गर्मा गर्म प्रेशर कुकर में बनी हुई खबरें आपको बताएंगे, क्योंकि सम टाइम जो है ना वो बढ़ेगा गोश्त नहीं गल पा रहा होता है, उसको प्रेशर कुकर में ज्यादा टाइम रखना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप समझते हैं बीफ वगैरह, चिकन तो गल जाता है ना कढ़ाई में भी, लेकिन बीफ के लिए जो है वो थोड़े कुछ खबरें होती हैं जो बड़ी वो होती है ना, उनको बड़ी मुश्किल से गलती है वो। उस पर शाजे जी ने जो है वो स्पेशल एक प्रेशर कुकर लिया है, वो उनके कमरे में लगा, मैंने देखा वो सीटी बजा देता है आखिर में, तो वो अब सीटी बजती वो आ गई है। तो सबसे पहले शाजे जी को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं?
वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू, ठीक है।
कैसी हैं आप, खैरियत से?
मैं वैसी हूँ। अच्छा तुमने मुझे बीफ का है?
नहीं,
तुम अब एक्सप्लेन करो ये बात के जी मोटा गोश्त मुश्किल से पकता है, तुमने मुझे मोटा गोश्त का?
नहीं मोटा भी नहीं कहा मैंने,
कल तुमने मोटी अकल मुझे बोला है। आई मीन व्हाट इज दिस भाई, ये क्या हो रहा है? यानी ये माजिद भाई के ना होने का तुम इधर नाजायज फायदा उठा रहे हो?
नहीं
तुम
मैंने
कभी
कल
मोटी
मोटा
कह रहे हो और मोटा कह रहे हो और कह रहे हो आपको उठाना इतना मुश्किल है।
मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था।
ये मोटा दिमाग कहना तारीफ?
नहीं, जो आज मैंने कहा कि कुछ खबरें मोटी होती हैं उनको गलाना थोड़ा टाइम लग जाता है।
लेकिन आपने उसके साथ ये भी बोला कुछ गोश्त मोटे होते हैं वो पकते नहीं है। नहीं। ये जो कुछ गोश्त मोटे होते हैं उसका क्या मतलब है? यानी तुम
मोटी गाय
मुझे मोटा है, तुमने गोश्त
नहीं जान,
तुमने मुझे बीफ का है?
नो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर,
अपने आपको मुर्गी का है, चिकन का है, अपने आपको मुर्गी? अच्छा ठीक है, तुम तो मुर्गी भी नहीं हो, तुम तो चूजा हो है?
हाँ।
तो पर मुझे तुमने किस चक्कर में बीफ का है भाई? ये क्या चक्कर है?
इस पर हल्फन कह रहा हूँ
हाँ।
कि मैंने आपको किसी भी किस्म का बीफ नहीं कहा।
अच्छा मुकरने में तो,
और मैंने न्यूज को बीफ बनाने की कोशिश की कि यार कुछ हाँ। न्यूज इतनी वो होती है, मतलब मुश्किल से गलती है
हाँ।
कि उनके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ता है
हाँ।
और जब वो गल जाती हैं, जब पक जाती हैं गर्मा गर्म, जैसे पक दिया खबरें जो है लेकिन अच्छा पक दिया के लिए आपको पकाना तो पड़ेगा ना
हाँ।
उस पकाने के रेफरेंस में इस पर लेकर आया था, लेकिन आप उस रेफरेंस को जो है ना पता नहीं कहाँ लालू खेत ले गई। हालांकि हम नाजमाबाद जा रहे थे अच्छे खासे। हमने क्या करना था, हमने जो ये
बच बचा
करीमाबाद से ब्रिज क्रॉस किया, उसके बाद नाजमाबाद के लिए राइट से राइट जाना था हमने।
अच्छा।
आप सीधा लेंगे लालू खेत।
अच्छा
तो ये प्रॉब्लम आप समझिए, नहीं समझेंगे आप।
अच्छा और वैसे तुम बड़े क्यूट लग रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर टी शर्ट बड़ी प्यारी
मैंने अब ब्लैक नहीं पहनी आज देख
शुक्र अब तुमने क्योंकि अब तुमने सोग बनाना खत्म कर दिया ना, अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारी किस्मत फूट गई है, तुमने मेरे साथ ही काम करना है, तो अब इसमें काला शर्ट पहनना
फिर मार खा गई आप क्या दिन है आज
आज वेंसडे है
खत्म हो रहा है जुमरा जुम्मा फील लाइक फीलिंग आना शुरू हो जाती है
अच्छा।
जैसे ही बुध खत्म
हाँ
वो फील आना शुरू हो जाती है वीकेंड
हाँ।
आ रहा है
ओ इसलिए तुम आज खुश हो
यस
ओहो हो
हमेशा खुश रहता हूँ
अच्छा अच्छा नहीं हमेशा तो तुम सड़े हुए होते हो हमेशा हमें जो वटे उठा के मार रहे होते हो लेकिन आज तुम जो है जरा खुश नजर आ रहे हो ठीक है
अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो है ना हाँ। वो अमन और शांति
है मतलब है हमारे ऑफिस में तुम ना शांति फैलाए रखो लेकिन दुनिया में शांति
मैंने
रहे।
हमेशा कोशिश की है कि वो पूरी हाँ। दुनिया में शांति होनी चाहिए काम अच्छा, ऐसा अच्छा। करो कि शांति फैले
अच्छा 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 तो फिर तुम गाना गाया करो ओम शांति ओम
ये कौन सा गाना
अच्छा अच्छा ओम शांति ओम शांति शांति ओम
गाना ये ठीक है जी लेकिन ये शांति वो खातून है कुछ जिनको मैं चाह रहा हूँ दुनिया में फैले वो वाली शांति नहीं है जो ओम शांति या जिसको आप गा रही हैं नहीं 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 ये शांति दूसरी वाली शांति है
ये आंटी शांति है
हाँ ये पूरी दुनिया में जो है ना वो अमन फैलाएं
अच्छा
इसलिए मैं चाहता हूँ कि फैले और
वो आंटी शांति आजकल वो मरी हुई है सारी दुनिया में पीस नहीं है
बताओ मचता है कि आप सारा दिन इसको मार दिया उसको मार दिया मेरे साथ बैठती है फिर तुझे बिच्ची दबा दूंगी इतना तशद्दुद आ गया न्यूज में पढ़ पढ़ के थोड़ा दो चार घंटे ना न्यूज से थोड़ा सा कार्टून पढ़ा करें नोनेहाल पढ़ा करें मैं आपको बुला दूंगा कुछ अच्छा, या ऑनलाइन अच्छा, आपको ढूंढ दूंगा पीडीएफ
अच्छा, ठीक है
हाँ जैसे आप चार पांच धमाकों की खबरें पढ़ लें
हाँ,
पूरी दुनिया में इसराइल ने लेबनान पे मार
हाँ,
दिया
हाँ,
ईरान ने इधर मार दिया उसने उधर मार दिया और झगड़े हो गए यूके में
हाँ,
फला मस्तियां हो गए एकदम जब चार छह न्यूज ये हो जाए ना उसके बाद एक लगाएं ब्रेक
नोनेहाल
पढ़े
अच्छा
लेकिन करें आप खुश रहेंगी
अच्छा
वरना तो आप तो काट जाएंगी
अच्छा 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 चलो ठीक है अच्छा आमिर साहब बात यह है कि हमारा जो कल का कंपटीशन था वो जबरदस्त किया
जबरदस्त जी
तो सारे पांचों जो हमारे गोल्ड टिकट थे जी वो चले गए हैं अब मैं आप लोगों के जो आपने मुझे कल अपने फोन नंबर्स दिए हैं उस पर मैं या आमिर या जीशान हम आपको ना डिटेल्स भेजेंगे कि आप जब फ्राइडे को वहां पे 11 बजे सुबह 11 बजे से मैच शुरू हो जाएगा तो आप लोगों ने 10:30 तक वहां पे पहुंच जाना ठीक है जी जो विनर्स हैं पहुंच जाओ बस उतने 11 बजे नहीं जिन्होंने कल 5 गोल्ड टिकट जीते हैं मैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि आप जो हैं उधर 10:30 बजे पहुंच जाना मैं आप लोगों के सेल नंबर पे आपको सारे टिकट्स भी हम लोग भेजेंगे तीनों में से कोई एक और आपके वो डिटेल्स भी भेजेंगे और सब कुछ आपको भेजेंगे ठीक है जी एक तो वे और वो जो एक हमारा जो पड़ा हुआ है अभी तक लायन सफारी का
उसके लिए तो मैं वो वाइटमिन हाँ, डी खा रहा हूं
आमिर जो है आमिर का जो बेटा है वो माशाल्लाह ऊंचा लंबा सेहतमंद है वो इसका अब्बा बन के इसके साथ जाएगा और एक इसका छोटा बेटा है वो और इनकी बेगम ये सब जाएंगे और उसमें आमिर जो है गुंगा बच्चा है
मास्क लगाया
हाँ मास्क लगाया होगा इसने तो ये सारी फैमिली जा रही है तो प्लीज आपको जो आमिर ने तरीका बताया है आपने सिर्फ हमको लाइक करना है यार व्हाट्स द बिग डील आई मीन लाइक कर लो हमको फेसबुक पे और नहीं नहीं फेसबुक पे टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे
एंड यूट्यूब पे
और हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसके ऊपर आप सिर्फ लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो सब्सक्रिप्शन फ्री है कोई इसमें पैसे नहीं है और वो जो है $200 का अफ्रीकन लायन सफारी का आप वो पैक लेके जा सकते हैं ठीक है जी
फैमिली पास है
हाँ वो फैमिली पास है ठीक है तो ऐसे है तो जनाब आज भी भाई मुझे तो पता नहीं था कि बांग्लादेश के साथ लोगों का इतना प्यार है हमारे पाकिस्तानियों का खासतौर पर
हमारे अपने भाई हैं
हाँ, अच्छा कल मुझे फिर जी 4 मैसेजेस आए अब मेरा वो जो फोन है ना असल में वो मर गया है वरना मैं वो फोन से नाम
यहाँ स्टॉप करें आपने देखा मारा मारी कितनी है फोन आपने ये नहीं कहा कि फोन मेरा जो है वो ऑफ हो गया है मेरी बैटरी उसकी डाउन हो गई है फोन मर गया है
मर गया
देखा आपने फर्क देख रहे हैं
हाँ फर्क देख रहे हैं
यार बाहर आए कार्टून पढ़ा करें
अच्छा जी तुम्हें पढ़ रही हूँ ना ये काफी है अच्छा जी तो वो फोन मेरा बंद हो गया तो अब एज अ रिजल्ट मैं वो 4 लोगों के जिनके कल मुझे वो मैसेजेस आए थे कि शाजिया जी और थोड़ा इसके ऊपर और एलैबोरेट करना तो आज एक और नई स्टोरी हम बांग्लादेश में लाए हैं दैट आल्सो इज गोइंग टू बी अ स्पेशल रिपोर्ट और हमारे पाकिस्तान की मिलिट्री पे और ISI पे बहुत सारे संगीन इल्जाम भी अब दुनिया में कुछ जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने लगाए हैं उसकी बेस पे आज हमने एक हमारे जो बड़े क्लोज फ्रेंड हैं मेरे थे सैफुर रहमान साहब दुबई गल्फ न्यूज में मेरे साथ थे बांग्लादेश से हैं उनसे हमने आज 3-4 मिनट منٹ کی بات کی ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے اور وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے جی کہ کس کا ہاتھ ہے. اور وہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اس میں کسی چائنا کسی پاکستان آئی ایس آئی کسی کا ہاتھ نہیں ہے. دس واز آل ہوم گرون. جو ہماری حسینہ تھی نا, ایک حسینہ تھی جس کے لیے کل میں گانے گا رہی تھی, ایک حسینہ تھی, وہ جو حسینہ تھی نا اس کے جو ظلم تھے اس کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو اٹس آل ہوم. تو وہ ہم آپ کو ایک اسپیشل رپورٹ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی, خبریں شروع کرتے ہیں. دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز. اور برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز پہ ہوتے ہیں سلطان بھائی. سلطان بھائی کے پاس آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ہیں 801 گوویڈ ڈرائیو ویسٹ کے اوپر, اور یہاں پہ ہر طرح کے ان کے پاس جو ہیں اپلائنسز ہیں اور جو مارکیٹ ہے اس سے کم پرائس پہ ہیں. تو آپ ان سے ان کے پاس جائیں, یا کہ آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں ایٹ 905-450-2828 پہ. اس کے علاوہ جناب ناصر شاہ صاحب جو ہیں 10 اگست کو لے کر آ رہے ہیں برامپٹن فیئر گراؤنڈز ہاٹ لیک روڈ کیلڈن کے اندر ایک پروگرام, اور یہ 10 تاریخ کو 10 ان کے آ رہے ہیں آرٹسٹ. اس کا نام ہے میگا میلا حلال فوڈ فیسٹیول اینڈ پراپرٹی ایکسپو 2024. اور یہ جو ناصر صاحب ہیں ان کو آپ کال کر سکتے ہیں. تو آپ کو اگر کچھ چاہیے جو ڈیٹیلز تو آپ ناصر بھائی کو کال کریں
416-647-1000.
اچھا, وقاص سید کو آپ کال کر لیں ایٹ 647-712-7000. اور جناب ولیج ٹیسٹ آنٹیریوز لارجسٹ حلال پاکستانی بفے, یہ جو ولیج ٹیسٹ ہے اس میں بھی ان کے بھی دو اب ریسٹورینٹس ہیں, ان پہ آپ جا کے کھانے میں انجوائے کا مزہ لے سکتے ہیں. 4141 ڈکسی روڈ میں سے ساگا, 905-232-3663, اور ایک اوکفل میں جو ہے 2294 لیک شور روڈ ویسٹ, اس کا نمبر ہے جی 905-226-2294. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ جا کے یہاں پہ, خاص طور پہ بھی جو ویکینڈ آنے والا ہے اور عامر جو ہے وہ آلریڈی فیلز لائک شاہ رخ خان ہے, تو اگر آپ بھی شاہ رخ خان کی طرح اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں تو پلیز آپ جا کے اور کھانے کا انجوائے کا مزہ لے سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, ہم آپ کو بتائیں کہ آج 2.3 ملین کینیڈینز جو ہیں ان کو اب یہ جو ڈینٹل کیئر کی سروسز دی جا رہی ہیں ان کے لیے اپروول جو ہے آ گیا ہے کوریج کا. 75% جو ڈینٹل کیئر پرووائڈرز ہیں وہ اس پروگرام کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ ہیلتھ منسٹر مارک ہالینڈ جو ہیں انہوں نے دی ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کینیڈا ڈینٹل کیئر پلان جو ہے یہ پہلے کچھ لوگوں کو آفر کیا گیا تھا اور اب ایلیجیبلٹی جو ہے اس کی ہم ہولے ہولے بڑھا رہے ہیں. یہ بات کر رہے تھے ڈینٹل آفس اوڈوا کے اندر, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ یہ پروگرام سلو چلے گا, لیکن فرسٹ 3 مہینوں میں ہی کافی تیزی سے یہ چلا جب ہم نے رول آؤٹ کیا. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو کچھ لوگوں تک نہیں 100% لوگوں تک کینیڈا میں پہنچانا چاہتے ہیں یہ سویدھائیں. 450,000 ایلیجیبل کینیڈینز جو ہیں ان کو کیئر ملی تھی جو لبرل بل تھا, اور اس میں وہ کہتے تھے کہ دس از دا لارجسٹ سوشل پروگرام جو ہے وہ کینیڈا میں جو ابھی تک رول کیا گیا ہے اس کی ہسٹری میں وہ ہے یہ. گورنمنٹ نے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے سینئرز کو سب سے پہلے لینا شروع کیا تھا مئی کے مہینے میں, اس کے بعد جو ایلیجیبلٹی آئی تھی وہ ایلیجیبلٹی جو آئی تھی وہ کڈس کی آئی تھی انڈر 18 اینڈ کینیڈینز ود ویلڈ ڈسبلٹی ٹیکس کریڈٹ سرٹیفکیٹ ان جون, اور باقی جو سب لوگ ہیں وہ سب اس چیز کو ایکسس کر سکیں گے بائی 2025. تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں آج منسٹر صاحب نے دی ہیں. تقریباً 100 ملین ڈالرز کینیڈین, آئی مین آف کورس کے جو پرائزز ہیں لوٹو میکس میں وہ آپ کو مل سکتے ہیں جو فرائیڈے کا ڈرا آنے والا ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر جو سب سے بڑا جو پرائز ہے وہ 70 ملین کا جیک پاٹ ہے. آنٹیریو لاٹری اینڈ گیمنگ کارپوریشن جو ہے اس نے کہا جی کہ 2 ملین پرائزز ہیں 1 ملین کے جو دیے گئے تھے ٹیوزڈے کے ڈرا میں, اور ایک مسز ساگا میں دیا گیا تھا, ایک مسز ساگا میں اور ایک کنگسٹن میں دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی کہ لیکن جو 70 ملین کا پرائز ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس ہے. جولائی 23 کو یہ اس کی قیمت 70 ملین ہو گئی تھی. جب تک پورے 7 وننگ نمبرز کسی کے پوری طرح سے میچ نہیں کریں گے ان کو یہ نہیں دیے جائیں گے. اس وقت ایسٹیمیٹڈ 37 ملین پرائزز جو ہیں وہ آپ جیت سکتے ہیں, اور ان کی ٹوٹل ویلیو جو ہے ان تمام پرائزز کی وہ 107 ملین ڈالرز کو کر رہی ہے ٹچ, جو کہ فرائیڈے میں ड्रॉ में निकल सकते हैं अगर आप जो हैं वो खुश नसीब है, हमारी तो किस्मत जो है वो बिल्कुल उस पर वटा पड़ा हुआ है, आप समझते हैं ना, वटा पड़ा हुआ है, तो हमको तो नहीं मिल सकता, अगर आपको मिल सकता है आप ले लो। न्यू रेंटल्स डॉट CA एंड अर्बनाइजेशन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो रेंट्स हैं कनाडा के अंदर वो ईयर ऑन ईयर जो है बहुत ज्यादा अभी तो ऊपर गए हैं, लेकिन वैसे थोड़ी सी उसकी ग्रोथ में स्लो पेस आ गई है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा राइज कर गए थे। जितनी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टाइप्स हैं उसके रेंट्स एवरेज 2201 थे जुलाई के अंदर, विच इज अप 5.9% फ्रॉम लास्ट ईयर, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो थी लेकिन वो स्लो रही, स्लोली राइज की है इन द लास्ट 31 मंथ्स। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो रिसेंट ईयर्स थी उसके अंदर ग्रोथ जो है वो वैसे तो ऊपर जाती रही है 10% से, और कुछ मार्केट्स जो हैं उनके अंदर काफी बिग जंप देखा गया लास्ट ईयर से, जो वैंकूवर था उसके अंदर तो इनफैक्ट 7% से डिक्रीज किए हैं रेंट्स लास्ट ईयर से कंपेयर्ड, क्योंकि ऑलरेडी भी वैंकूवर में प्रॉपर्टीज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। टोरंटो के अंदर जो है वो 5% से नीचे आए हैं क्योंकि जो कॉन्डोज बेतहाशा कंप्लीट होकर मार्केट में आ गया है। हैलिफैक्स जो है उसके अंदर जो 18.2% का इंक्रीज आया रेंट्स में, सस्कैचुअन एडमंटन और रिजाइना के अंदर जो है उसमें भी डबल डिजिट गेन्स आए हैं, तो कुछ इलाकों में रेंट्स नीचे आ रहे हैं और कुछ में काफी ऊपर जा रहे हैं। अच्छा जनाब, आज ट्रंप साहब ने हमारे ट्रूडो साहब के बारे में बहुत ही गलत किस्म की जो है वो बातें की, और उन्होंने बहुत ही फॉल्सली क्लेम किया कि फिडेल कैस्ट्रो जो हैं वो ट्रूडो साहब के असल फादर हो सकते हैं। अब ये तो बड़ी गंदी बात कर दी है ट्रंप साहब ने। ट्रंप साहब ने कहा जी कि ये जो है इससे पहले भी वो ट्रूडो साहब को कहते रहे हैं कि ये बड़ा टू फेस्ड है, ये बड़ा वीक है, फार लेफ्ट ल्यूनेटिक है, ये तो इस तरह की बड़ी बातें जो है करते हैं। वो कहते हैं जी ट्रंप साहब कि मैं जो है वो ज्यादा इसके ऊपर जो है ट्रस्ट भी नहीं करता हूं, और अब अगर ये फिर से भी अगर प्रेसिडेंट बन के आए तो इनके बीच में काफी मिसट्रस्ट जो है वो रहेगा। वैसे तो उन्होंने कहा जी कि जो ट्रंप साहब के मुताबिक जो ट्रूडो साहब की फैमिली है वो फिडेल कास्ट्रो के साथ बड़ी क्लोज थी, और उन्होंने कहा जी कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, मतलब फिल्टर तो है नहीं ना ट्रंप साहब का, क्योंकि आपको पता ही है कि जब फिडेल कैस्ट्रो की 2016 में डेथ हुई थी तो ट्रूडो साहब ने जो है बड़ा उसको जो है अफसोस का इजहार किया था और उनको बहुत ज्यादा इसके लिए क्रिटिसाइज किया गया था। उसकी वजह यह है कि इनके फादर जो है पीए ट्रूडो और इनकी जो मदर है मार्गरेट, उन्होंने क्यूबा का ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एक ट्रिप किया था 1976 में, जबकि इनका बड़ा बेटा जस्टिन ये जो थे ट्रूडो ये अभी पैदा हुए थे। ट्रंप साहब जो है वो कहते हैं वैसे तो मैं ट्रूडो के साथ ठीक ही चलता हूं, बड़ा प्रोग्रेसिव है, लेकिन कनाडा के कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं ट्रूडो को, और अगर कोई कंजर्वेटिव आएंगे तो हो सकता है कि ये उनको विन अगर कर लिया उन्होंने तो जरा लोग जो हैं जरा हैप्पी रहेंगे। इसके बाद उन्होंने फॉल्सली एक और भी चीज को क्लेम किया कि ओबामा साहब जो हैं वो यूएस से बाहर पैदा हुए थे, ये भी अब ठीक नहीं है। अपनी जो 4 साल की प्रेसिडेंसी थी उसमें काफी रॉकी रिलेशंस थे कनाडा के साथ ट्रंप साहब के, इससे पहले जब वो आए थे, और ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट कर गई थी जिस वक्त शालेवोय में G7 का मीटिंग आया था 2018 में कनाडा में, और ट्रंप साहब आए थे और उन्होंने काफी कनाडा को जब प्रेस किया था, जब मीटिंग खत्म हुई थी G7 की तो ट्रूडो साहब ने कहा था कि भाई आप कनाडा को इस तरह पुश राउंड नहीं कर सकते हैं और इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, और आप हमारे एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर टैरिफ्स नहीं लगा जा सकते हैं। अगर आप आज का देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में जो ट्विटर का ट्रेंड है तो उसमें काफी लोगों ने ट्रंप साहब को बैश किया है इस चीज के लिए कि जब उन्होंने कहा जी कि ट्रूडो साहब जो हैं फिडेल कैस्ट्रो के बेटे हो सकते हैं, वेरी वेरी यू नो बिलो द बेल्ट चीप किस्म का यह कॉमेंट है, यानी कि उन्होंने सबको ही इसमें जो है रगड़ दिया है और उस पर बड़ी खराब बात है जो उन्होंने की है। बहरहाल क्या इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे हम। ब्रिटिश पुलिस जो है जी वो बिल्कुल रेडी है क्योंकि आज का दिन इंग्लैंड के अंदर काफी 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 खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमने आपको कल ही बताया था कि 30 लोकेशंस पे 30 रैलीज जो हैं राइट्स जो हैं बड़े वायलेंट राइट्स जो हैं वो हो सकते हैं, और कल ही हमने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं केयर स्टार्मर उन्होंने कहा था कि 6000 स्पेशली ट्रेन फोर्सेज जो हैं उनको हम ला रहे हैं। लंदन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस है उसने भी कहा जी कि हम लंदन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, ये जो हेटफुल और डिविसिव ग्रुप्स हैं ये बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और हम इनको टॉलरेट नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर स्टॉर्मर ने भी कहा कि ये जो फार राइट वाले हैं ये ठग्स हैं, ये ठगट्री जो है ये चला रहे हैं यहां पे। पुलिस ने जो है ये जो राइट्स के अंदर इन्वॉल्व थे 400 लोग उनको पकड़ा था और फिर कहा था कि जी आप अगर और डिसऑर्डर फैलाएंगे तो फिर आपको और लोगों को भी जेल में डाला जा सकता है। इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्स के ऊपर कहा कि अगर आप प्रोवोक करेंगे वायलेंस तो फिर हम उसको पूरी ताकत के साथ लॉ का इस्तेमाल करते हुए आपको फिर जो है वो दिखाएंगे लॉ की ताकत, और अनलॉफुली अगर आप ठग्स और क्रिमिनल्स की तरह अगर आप करेंगे टारगेटिंग मुस्लिम्स तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त यहां पर इंग्लैंड में नहीं किया जाएगा। तो आज का दिन जो है वो काफी टेंस है इंग्लैंड के अंदर, खासतौर पर लंदन के लिए जो उनका कैपिटल है। इंग्लैंड के अंदर ही जो शमाइमा बेगम है जो आपको पता ही है कि 15 साल की थी जिस वक्त वो सीरिया चली गई थी और उन्होंने कहा था कि वो आईसिस में जाके वो रही थी और वहां पे ये दो तीन फ्रेंड्स थी जो गई थी और वहां पे फिर पता चला था कि एलिजली शायद उन्होंने किसी आईसिस मेंबर से शादियां भी की थी या क्या, वो सारी डिटेल्स हमने आपको बताई थी। उस सिलसिले में इन्होंने जब ये वापस इंग्लैंड आई तो उन्होंने कहा जी कि मुझे अपना यूके का सिटीजनशिप वापस चाहिए है और काफी देर से ये लड़ाई चल रही थी। अलबत्त आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिफ्यूज कर दिया है इनका अपील और उन्होंने कहा कि आपको यूके की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो है बिल्कुल ये बात को माना नहीं जा सकता है। उसकी वजह ये है कि ये एक रूलिंग आई थी प्रीवियसली, होम सेक्रेटरी साजिद जावेद साहब जो थे उन्होंने कहा था कि जो लोग इंग्लैंड के इंटरेस्ट के खिलाफ खेलते हैं काम करते हैं उनको यूके की सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए, उसी को अपहोल्ड किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। इनके लॉयर्स ने कहा था जी कि शी वॉज द विक्टिम ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ये स्कूल गर्ल थी जब ये ईस्टर्न लंदन से चली गई थी अपने दो फ्रेंड्स के साथ इन 2015 और आईसिस को इसने ज्वाइन किया था, तो ये बच्ची थी तो जो अथॉरिटीज थे उनका काम था इसको एयरपोर्ट पे रोकना या इसका जब पासपोर्ट बन रहा था तो उसके बारे में पूछना। इसको जो है फाइंड आउट किया गया था सीरियन रेफ्यूजी कैंप में और फिर ये जो थी ये वापस आई थी इंग्लैंड में वापस आई थी और उसके बाद इसने कहा था कि मैं आई रियली फील सैड एंड बैड अबाउट इट और मुझे मेरा यूके सिटीजनशिप चाहिए है, तो जिसके ऊपर फिर कोर्ट ने भी ना किया था और होम सेक्रेटरी जो थे उस वक्त के उन्होंने भी कहा था कि आपको नहीं दिया जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी कि अगर हमने तुमको अब सिटीजनशिप अप्रूव कर दिया जो तो जो इससे पहले के लोग थे यानी कि जो होम सेक्रेटरी भी जो बाकी की लोअर कोर्ट्स थी उनकी जो रूलिंग है उनको हम रिवोक करेंगे तो उनकी रूलिंग्स हम रिवोक कर नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हें जो है वो राइट जो है वो कर रहे हैं डिनाई कर रहे हैं। इनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने कहा जी कि चूंकि अब इंग्लैंड की कोई भी कोर्ट्स नहीं मान रही हैं तो ये शमाइमा बेगम का जो केस है अब ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो स्ट्रासबर्ग में है उधर लेके ये केस जो है अब जाएंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल है जी उसकी एक न्यूज है और इसके मुताबिक जॉर्डन कतर और सऊदी अरेबिया जो है उनको यूएसए ने कहा था कि भाई आप पोस्ट वॉर गाजा के अंदर पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे अपनी फोर्सेस भेजें टू प्रोटेक्ट पैलेस्टीनियंस, लेकिन लोग कहते हैं कि इसका मतलब प्रोटेक्टिंग पैलेस्टीनियंस नहीं होगा, इसका मतलब प्रोटेक्टिंग इसराइल होगा। इसमें सिर्फ दो कंट्रीज जो गल्फ के अंदर हैं इजिप्ट और यूएई उन्होंने कहा था कि हां जी अपनी हम फोर्सेस भेज सकते हैं। जो इन्होंने विजिट्स किए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब ने कतर इजिप्ट इसराइल और जॉर्डन में जून के अंदर उन्होंने कहा था कि भई आप लोग जो हैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उनको ट्रेन करें और वहां पर भेजें, यूएस भी आपके सिक्योरिटी फोर्सेज को ट्रेन करेगी टेम्पररी बेसिस पे क्योंकि इवेंचुअली हम जो ये सारे का सारा गाजा का कंट्रोल है ये फिर हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देंगे, लेकिन इसके अंदर उन सब कंट्रीज ने ना किया था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने कहा था कि जी कायरो और अबू धाबी ने सिर्फ जो है वो हामी भरी है कि वो अपने ट्रूप्स भेजेंगे। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो आज ओआईसी की मीटिंग चल रही है उसमें सऊदी के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा जी कि हानिया की डेथ ऑन इरानियन सॉयल इज ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इट्स सॉवरेनिटी। इसके अलावा ओआईसी ने यह भी कहा है कि इसराइल ने जो कुछ भी ये कर रहा है पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट ये गलत कर रहा है। तो आज काफी सारी ये रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कि अब अमेरिका जो ये अब चाह रहा है कि जी और ओआईसी ने यह भी कहा है कि इमीडिएटली सीज फायर की तरफ जाया जाए, तो जब तक सीज फायर नहीं होगा तो अरब कंट्रीज भी अब लग नहीं रहा है कि मूड में है कि यूएस के साथ अब बात करेंगे या इस चीज को आगे बढ़ावा देंगे। अरब न्यूज की एक खबर आई है जी, और उसके मुताबिक जो है मिडल ईस्ट के अंदर हालात काफी खराब 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 होते जा रहे हैं, खासतौर पे ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन जो है अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको पता ही है कि जो इन्होंने इस्माइल हानिया जो हमास के चीफ थे उनको मारा था तेहरान में, और इससे पहले हिजबुल्ला के जो कमांडर थे फुआद शकूर उनको भी बेरूत के अंदर इन्होंने मारा था, और ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है अब इनके बीच में शुरू हो गई है। आज ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई, उन्होंने कहा जी कि तेहरान बिल्कुल रिटेलिएट करेगा इसराइल की अग्रेशन के खिलाफ। इसके अलावा ईरान के जो ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गॉड्स कॉर्प्स है उन्होंने भी कहा है कि हम इस खून का बदला लेंगे। प्रेजिडेंट मसूद पेजक्शिया जो हैं ईरान के, उन्होंने भी आज एक फोन कॉल किया है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों को, और उन्होंने कहा जी कि हम ये जो अग्रेशन इसराइल ने हमें दिखाई है और हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ दिखाई है उस पर हम खामोश नहीं रह सकते हैं। हमारी सॉयल के ऊपर आके हमारी सॉवरेनिटी को खराब करके हमारे मुल्क में आके किसी को मारना अनएक्सेप्टेबल है। और उन्होंने कहा जी कि अगर यूएस और वेस्टर्न उसके एलाइज जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि ये वॉर को रोका जाए तो इसराइल को जीनोसाइड से रोका जाए गाजा के अंदर और सीज फायर की तरफ उसको लेके जाए। इसके साथ साथ नतन्याहू साहब जो है उन्होंने भी कहा जी कि इसराइल के जो एनिमीज हैं हम उनको के साथ बदला उनसे लेंगे और हम अब विक्ट्री की तरफ हौले हौले जा रहे हैं और ये जितने भी हमें थ्रेट्स दिए जा रहे हैं रिटेलिएशन के हम उससे भी निपट लेंगे। उन्होंने कहा जी मुझे पता है कि मेरे सिटीजन बहुत ज्यादा कंसर्न है लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप पेशेंट रहो, लेवल हेडेड रहो, और हम जो है डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली भी अपने दुश्मनों के खिलाफ जो है वो मोर्चा बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा इसराइलियों ने कहा कि ये जो नए हमास के लीडर याहिया सिनवार हैं उनको भी शायद वैसी ही उनका फेट रहेगा जैसे कि इस्माइल हानिया का, यानी कि उनको भी इसराइल मारेगा। तो ये जनाब आज बहुत सारे मिले जुले जो है बयान आए हैं। ठीक है जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर फियाज कुरैशी। डॉक्टर फियाज कुरैशी बड़े ही जबरदस्त किस्म के डेंटिस्ट हैं, तीन इनके क्लिनिक हैं, दो मिसिसागा में और एक स्कार्बरो में। तो अगर आपको कोई भी डेंटिस्ट्री की सर्विसेज चाहिए तो आप उनको कॉल कर लें जनाब एट 9052325678 फॉर मिसिसागा क्लिनिक्स, और स्कार्बरो के क्लिनिक के लिए 4167579999 आप उनको कॉल करें और आप उनसे सर्विस। और जनाब राजा बादशाह जी जो है बड़ी जबरदस्त आपको ऑटो और होम की सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, ऑल स्टेट के साथ हैं, और आप उनको कॉल कर सकते हैं 6472903773। तो आप उनको भी कॉल कर लें। ठीक है जनाब, ऐसे है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कहा जी कि मैं अपोलोजाइज करूंगा अगर मुझे पता चला कि मेरे पीटीआई के जो वर्कर्स थे और एक्टिविस्ट थे वो इन्वॉल्व थे मे 9 के राइट्स के अंदर जो कि लास्ट ईयर हुए थे जब इनको अरेस्ट किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंपाउंड से ऑन करप्शन केसेस, ऑन अलेज्ड हमें कहना चाहिए और अलेज्ड करप्शन केसेस। उन्होंने कहा जी कि मैं सैक भी करूंगा उन सबको और मैं खुद भी उनको जो है पनिशमेंट उनके लिए दूंगा अगर मेरे पीटीआई के वर्कर्स जो है वो होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी इससे पहले उन्होंने कहा था कि रेंजर्स ने जो है वहां से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कंपाउंड से मुझे ड्रैग किया था, और जो सबसे आपका पाकिस्तान का पॉपुलर आदमी है उसके साथ आप ऐसा सलूक करेंगे तो क्या आपको मेरे से माफी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन आज इन्होंने थोड़ा सा अपना स्टांस थोड़ा सा सॉफ्ट किया, एक रिटन रिस्पॉन्स जो इन्होंने रॉयटर्स को आज भेजा है उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि मिलिट्री की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, न सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पे बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर भी मेरे जो है एक्सीलेंट रिलेशंस हैं, और मिलिट्री एज एन ऑर्गेनाइजेशन को हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं, सिर्फ जो ऊपर कोई एक दो जो इंडिविजुअल्स बैठे होते हैं मैं उनको क्रिटिसाइज करता था। और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मैंने इनको कहा है कि हम बिल्कुल आपको जो है निगोसिएशंस आपके साथ करने के लिए तैयार हैं अगर आप फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएंगे, और ये जो आपके बोगस सपोर्टर्स हैं इनको आप सैक करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मेरा यूएस के साथ कोई ग्रज नहीं है क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि यूएस को मिसगाइड किया गया था, और हालांकि उसको वो कुछ अरसा पहले जो थे वो 2022 में उन्होंने कहा था कि इट वॉज बिहाइंड माई आउस्टर, लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने कहा था मुझे पता चला कि जनरल जो है वो हमारे आमिर वो जो जनरल थे बाजवा है ना, जनरल बाजवा, उनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि वो इनको मिसगाइड कर रहे थे। तो बहरहाल वो कहते हैं जी इसलिए मैं अब यूएस को नहीं करता हूं, ब्लेम नहीं करता हूं। पीटीआई ने आज जनाब सुप्रीम कोर्ट को मूव किया है फॉर इलेक्शन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2024 विच वॉज पास्ड बाय नेशनल असेंबली एंड सेनेट। تاکہ سپریم کورٹ نے یہ جو جولائی 12 کا رولنگ دیا تھا ریزرو سیٹس پہ کہ جو اس کو عمران خان کی پارٹی کو دیا جائے اس کے خلاف جو ہے یہ بل پاس کیا تھا انہوں نے. پلی جو تھی یہ فائل کی ہے انہوں نے انڈر سیکشن 184(3) آف کانسٹیٹیوشن جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے گوہر خان نے اپنے لائر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے تھرو, اور انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ یہ جو بل آیا ہے اس کو نل اینڈ وائڈ آپ کہیں. یہ بل ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اٹ واز ٹیبلڈ بائی پی ایم ایل این لا میکر بلال اظہر کیانی لاسٹ منتھ, اور پھر یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اپروو ہو گیا تھا. سپریم کورٹ کی جب ججمنٹ آئی تھی تو اس میں انہوں نے ای سی پی کو کہا تھا کہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں, جس کے بعد ای سی پی نے 93 سیٹس جو تھیں وہ ان کو دی تھیں ان 3 پروونشل لیجسلیچرز. پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں علی محمد خان, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چینجز لائے جا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں یہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک ہے اور ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ کے اندر. اس کے بعد جو ہے پھر فواد چودھری صاحب کا بھی بیان آیا, انہوں نے ای سی پی کو کہا کہ اگر آپ اپنی ریپوٹیشن کو بچانا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کو ایٹ لیسٹ 41 سیٹس نیشنل اسمبلی کے اندر دیں. آج یہ باتیں انہوں نے اس وقت کی جس وقت یہ ای سی پی کے بینچ کے سامنے حاضر ہوئے تھے اپنے کنٹیمپٹ کیس میں, جس میں انہوں نے بہت سارے الیگیشنز جو لگائے تھے الیکشن کمشنر پہ اور ای سی پی کے اوپر بھی, جس پہ کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سوری مانگیں. انہوں نے سوری کیا تھا لیکن ای سی پی نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریٹن اپالوجی دو, تو اسی سلسلے میں یہ آئے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ بات کی ہے. اچھا جناب, باتیں جو ہیں بڑی بڑی سب لوگ کر سکتے ہیں لیکن ڈیٹا جو ہوتا ہے نا, ڈیٹا پھر جھوٹ نہیں بولتا ہے. ایک آفیشیل ڈیٹا آج آیا ہے جو منسٹری آف اکنامک افیئرز ہے, انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے نیشنل اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پی 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 کی جو گورنمنٹ ہے اس نے سب سے زیادہ آئی ایم ایف سے پیسے لیے تھے. واہ جی واہ, کیا بات ہے بھائی جان, تو آج پتا چلے ہیں. اچھا جی, بہرحال وہ کہتے جی کہ پی 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 کی جو گورنمنٹ تھی 2008 سے 2013 تک, اس کے بیچ میں لارجسٹ بوروئنگ جو ہے پی 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 نے کی تھی آئی ایم ایف سے, جبکہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی 2018 سے 2022 تھے انہوں نے ہائیسٹ انٹرسٹ پر ان لونز کے اوپر ان کو پے کرنا پڑا تھا. تو ڈاکیومنٹ جو ہے آج جب یہ سامنے آیا تو اس نے شو کیا کہ پی 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 کی گورنمنٹ نے 7.72 بلین US ڈالرز دیے تھے ان اسپیشل ڈرائنگ رائٹس, اور اس کے اندر انہوں نے ری پیمنٹس کی تھی 3 بلین ڈالرز کی ٹو آئی ایم ایف بٹوین 2008 اینڈ 2013. اس کے ساتھ ساتھ پی 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 جو ہے اس نے 484 ملین ڈالرز انٹرسٹ بھی پے کیا تھا آئی ایم ایف کو. واہ جی واہ, لٹ پائی ہوئی ہے, کیا بات ہے. اس کے بعد جی دوسرے نمبر آتا ہے نواز شریف صاحب کا, ان کی گورنمنٹ نے 6.48 بلین US ڈالرز جو تھے پانچ سال میں لیے تھے بٹوین 2013 اینڈ 2018, اور انہوں نے ری پے کیے تھے 5.92 بلین. اس کے علاوہ انہوں نے 317 ملین کا انٹرسٹ بھی دیا تھا. بائی دا ٹائم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, پی ٹی آئی کو بھی 6 بلین ڈالر کے آئی ایم ایف سے قرضے لینے پڑے, لیکن انہوں نے ری پے کر دیے اس میں سے 4.02 بلین, لیکن ان کو انٹرسٹ پیچھے کا جو اکیومولیٹ اور سارا تھا اس کی وجہ سے 791 ملین US ڈالرز ان کو آئی ایم ایف کو انٹرسٹ میں دینا پڑا. لاسٹ منتھ پی ایم ایل لیڈ جو گورنمنٹ ہے اس نے کہا تھا جی کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کر رہے ہیں ٹو گیو اس فردر 7 بلین US ڈالرز ایز اے 37-منتھ لون پلان. آج جو فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں, مجھے یہ 7 بلین مل جائیں گے اگست اینڈ کے اوپر. ابھی مئی کے اندر ہی انہوں نے شارٹ ٹرم بیسس پہ 3 بلین ڈالرز جو ہیں آئی ایم ایف سے لیے تھے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں جن کی پاکستان میں بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں, او جی اتنے بڑے بینکر ہیں اور بڑے زبردست, ان کی یہ کیا فورن کیا یہ فائنانس پالیسی ہے؟ یہ بینکر جو تھے یہ کس ٹائپ کے بینکر تھے بھائی؟ یہ بیک بینچنگ کے بینکر تھے یا کس طرح کے بینکر تھے کہ قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں؟ کوئی ان کو پالیسی نہیں نظر آ رہی اس جو ہے یہ اسپائرل میں سے نکلنے کی, بس قرضوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں بھائی جان. تو جتنا بڑا اپنا قد وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قرضوں کا قد بھی اتنا بڑا ہو جائے, تو یہ تو مطلب بڑی ہی حیرت کی بات ہے. اچھا جناب, کچھ اچھی کیا خبریں بھی تمہیں سنا دیے. وہ عامر کہتے ہیں نا انہوں نے حال پڑھو, میں نے انہوں نے حال میں سے ایک خبر نکال دی ہے آپ کے لیے. یہ ایک ہوا ہے جی, فرسٹ انٹرنیشنل نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ فلپینز کے اندر उसके अंदर जनाब पाकिस्तानी बच्चों ने बड़ा ही धांसू किस्म का काम किया है। पाकिस्तानी बच्चों ने इसमें 2 सिल्वर मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जो है वो जीते हैं। सुलेमान नोमान ऑफ सिद्दीक पब्लिक स्कूल इस्लामाबाद, सुभान काशिफ ऑफ लाहौर ग्रामर स्कूल, इन्होंने जी सिल्वर विन किए हैं। एहबान अवान ऑफ कराची ग्रामर स्कूल, कासिम सलाम ऑफ सिद्दीक पब्लिक स्कूल रावलपिंडी, इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लायंस साइंसेज एंड टॉप रैंकिंग जो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, अलॉन्ग विद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इन्होंने सारे पाकिस्तान में से काबिल तरीन बच्चे जो थे उनको सिलेक्ट किया था ये न्यूक्लियर साइंस के कॉम्पिटिशन के लिए। और इनकी जो ट्रेनिंग थी वो हुई थी अंडर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज के डॉक्टर सज्जाद ताहिर के, और फिर डॉक्टर मोहम्मद मकसूद एजुकेशन डायरेक्टरेट में जो काम करते हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में उसके अंडर। ये जो इवेंट था ये फिलीपींस क्लार्क के अंदर हुआ था August 1-6 के बीच में, और इसको स्पॉन्सर किया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने। सो रियली अ बिग बिग डील, क्योंकि कोई ऑर्डिनरी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लालू खेत टाइम की, आमिर का जो फेवरेट लालू खेत है उसकी नहीं थी, सारी टॉप, यानी कि जाहिर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अगर एजेंसी जो है दुनिया की सबसे बड़ी वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो अगर वो उसके अंडर ये हो रहे थे तो बिग डील। अच्छा जनाब, फिर मैं क्या रोने हाल से बाहर आ जाए, फिर एक आपको रोने वाली खबर दे दें। पाकिस्तानी नेशनल आसिफ मर्चेंट जो है 46 ईयर्स उनकी जो एज है, उनको आज चार्ज किया गया है ट्रंप साहब की ये जो फॉइल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट थी उसके लिए। वो कहते हैं जी कि इसने बंदों को यूएस के अंदर रिक्रूट करने की कोशिश की और इसने अलजदी एक प्लॉट बनाया था कि इसको मारने के लिए, क्योंकि जो यूएस का रोल था इन द किलिंग ऑफ ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी इन 2020, तो उसके लिए ये बड़ा गुस्से था, तो उसके लिए ये बदला लेना चाहता था। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि इसने अपना बहुत सारा टाइम जो है ईरान इराक में जो है वो स्पेंड किया है, और इसको चार्ज किया गया है विद मर्डर फॉर हायर इन फेडरल कोर्ट इन न्यूयॉर्क ब्रुकलिन ब्रो। फेडरल जज जो है उन्होंने ऑर्डर दिया था इसके डिटेन करने का July 16 को। हालांकि जो अटॉर्नी जनरल है मैरिक गार्लैंड, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटर्स को वैसे कोई इसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिली है इन कनेक्शन विद द पेंसिल्वेनिया शूटिंग, क्योंकि वो जो लड़का था 20 साल का, ही वॉज अ लोन गनमैन। अलबत्ता ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कि ये एक और भी दूसरा प्लान शायद बना रहा था ट्रंप साहब के ऊपर अटैक करने का। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन मुमताज ज़हरा बलोच जो है उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद जो है इट इज इन टच विद अथॉरिटीज इन यूएस, और हम ज्यादा डिटेल्स की बात कर रहे हैं और हम मीडिया रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स आसिफ का जो रिज्यूमे है वो जो अभी मीडिया को मिला है वो ये शो करता है कि ये कराची के एक बैंक के अंदर बैंक मैनेजर था इन 2010, और ये मैनेज करता था एसेट्स एंड लायबिलिटी पोर्टफोलियो ऑफ ओवर 1.850 मिलियन रुपीज, और इसके जो क्लाइंट्स थे सारे ही थे रिटेल कमर्शियल कॉर्पोरेट सेक्टर के बहुत सारे थे, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मार्केटिंग ऑफ न्यू क्लाइंट्स। तो ये जो है लड़का, इसका पता नहीं चला कि ये कब रेडिकल हो गया। अब ये जो बार बार ईरान जाता था उसके लिए इसने प्रोसिक्यूटर्स को वहां पे बताया कि मेरी बीवी जो थी वो ईरानियन है, और तो उन्होंने फिर पूछा कि भाई तुम इराक क्यों जाते रहे हो, तो उसका जाहिर है कि अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से जो सारा उन्होंने लिंक ढूंढा। अब ये लिंक कितना सच्चा है कितना सही है कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है ना कि CIA और FBI वाले अगर किसी के खिलाफ कोई बनाना चाहते हैं स्टोरी तो वो बना सकते हैं, पूरे का पूरा सीन क्रिएट कर देते हैं वो। तो क्योंकि अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड जो है वो कह रहे हैं हमें एविडेंस नहीं मिला है, तो अगर एविडेंस नहीं है तो फिर कोई दूसरी किसी और असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए ये प्लॉट कर रहे थे। तो अब ये सारी चीजें जैसे ही होले होले सामने आएंगी फिर हम आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, ये जो बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा टर्मोइल आया हुआ है इसके लिए अब इंडियन गवर्नमेंट भी जरा हिली हुई है थोड़ी सी, खासतौर पे कुछ उनके जो राज्य हैं यानी कि कुछ उनके जो स्टेट्स हैं जैसे कि आसाम और वेस्ट बंगाल, वो काफी हिले हुए हैं क्योंकि वो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ उनका बॉर्डर है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं यहां पे आसाम और वेस्ट बंगाल में खासतौर पे वो कह रहे हैं कि हमें बड़ा खतरा है और हिंदुओं को बड़ा खतरा है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा जो हैं उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा कि हमारा वैसे तो फोकस बॉर्डर के ऊपर है बांग्लादेश के साथ, लेकिन इसकी जो जो इम्पैक्ट है वो असम के अंदर भी नजर आएगा और खास तौर पे 2041 में नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि 2041 में असम एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट बन जाएगा और हिंदुओं का यहां पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं कि ये बड़े अनसर्टन टाइम्स हैं, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि सारे लोग एंड्योरेंस और करेज शो करें, हम अपनी एफर्ट्स जारी रखेंगे, हम एक रोशन सुबह के लिए काम करते रहेंगे और हमको अपना रिलीजन और कल्चर भी बचाना है मुसलमानों के अगेंस्ट। वेस्ट बंगाल के जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है RS MP सामिक भट्टाचार्य, उन्होंने भी कहा जी कि वो दिन दूर नहीं है जब जो बांग्लादेश में हुआ है वो वेस्ट बंगाल में भी हो सकता है, और अगर लोगों को पता नहीं है तो उनको पता होना चाहिए, और इसीलिए हम CA जो ये जो सिटीजनशिप एक्ट लाए थे, अमेंडमेंट एक्ट, इसीलिए वो कहते हैं जी हम ये CA बंगाल में लेकर आए थे, यानी कि कोई मुसलमान ज्यादा आके जमीन जमीन ना ले ले और कोई बाहर के लोग ना आए। बंगाल के बीजेपी के दूसरे लीडर जो है दिलीप घोष, उन्होंने भी एक्स के ऊपर लिखा जी कि TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस और CPIM ये जो मार्क्सिस्ट है पार्टी है, वो कहते हैं जी कि ये इसीलिए स्टूडेंट्स के साथ वहां पे बांग्लादेश में खड़े रहे क्योंकि ये जो है मुसलमानों को फेवर करते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू जो हैं वो डेंजर में हैं, लेकिन हम क्वाइट बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन ये लोग जो हैं जब हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है तो ये खामोशी से बैठे रहते हैं। तो मतलब काफी चीजें हैं, आमिर साहब भड़क गई हैं हिंदुस्तान में भी, काफी भड़क गई। PDP की जो चीफ है महमूदा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने कहा जी जम्मू और कश्मीर के अंदर भी बहुत सारा यूथ है और वो यूथ भी जो है उसके काफी मसले हैं और वो यूथ भी काफी खराबी काफी गुस्से में है, तो ऐसा ना होए कि जो खराबी बांग्लादेश में हुई है उसी को फॉलो करते हुए यूथ जो है वो चीजें यहां पे भी लेकर आए। एक तरह से उन्होंने डराया है जो हैं लीडर्स हैं हिंदुस्तान के, उनको उन्होंने कहा है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज और जो बड़े लीडर्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि यहां पे जो है जम्मू और कश्मीर इसमें भी बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है, और अगर यहां पे इन्फ्लेशन रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, रिजर्वेशन जो है उसका वीक होते जाएंगे और डिक्टेटरशिप चलती रहेगी तो फिर ये लोग भी राइज करेंगे और इनको भी संभालना फिर आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि डिक्टेटरशिप ज्यादा देर तक नहीं चलती है। आप जो है आपको पॉलिसीज लोगों के खिलाफ नहीं लोगों के हक के लिए लाने की जरूरत है, और जिस वक्त लोगों का पेशेंस जो है वो आप ब्रीच कर देते हैं तो फिर वो किसी भी हद तक जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा ना हो कि फिर आपको भी शेख हसीना की तरह बच के कहीं पे भाग के जाना पड़े। आप अभी तक प्रेशर एक्सप्लॉयटेशन और ये जो बहुत ही ड्रेकोनियन UAPA के लॉज हैं ये आप चला रहे हैं और लोगों के अंदर इससे गुस्सा जो है बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं होप करती हूं कि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन यहां पे ना आ जाए। इसके साथ साथ नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी आज कहा है कि जी इलेक्शंस यहां पे आने वाले हैं लेकिन हम किसी भी पार्टी के साथ कोई भी अलायंस नहीं बनाएंगे, हालांकि कांग्रेस के साथ उन्होंने अलायंस बनाई थी लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। तो काफी हिंदुस्तान के अंदर भी उथल पुथल चल रही है। कुमार सानू, हम सब ही उनके गानों से बहुत ज्यादा जो है वो एंजॉय करते हैं, एंजॉय का मजा लेते हैं। 1990s में तो आपको पता है सिर्फ कुमार सानू के ही गाने चलते थे, तो आज उन्होंने जो है एक इंटरव्यू दिया है। आपको पता ही है उनके गाने बड़े जबरदस्त, चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, चोरी चोरी जब नजरे में, तो बड़े खूबसूरत उनके गाने थे। आखिरी जो उन्होंने गाना गाया था दर्द करारा गाया था 2015 की जो फिल्म थी दम लगा के हैसा, और फिर 2018 में जो फिल्म एक आई थी सिम्बा उसके अंदर इसमें इनका गाना रिक्रिएट किया था अकमारे। वो कहते हैं जी कि मेरा जर्नी जो है वो बड़ा अच्छा रहा है, लोग इंडस्ट्री में मुझे बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ा प्यार दिखाते हैं लेकिन मुझे गाने कोई नहीं देता। व्हाट इज दिस मिस्टर आमिर, वो कहता है प्यार तो बड़ा दिखाते हैं, रिस्पेक्ट बड़ा दिखाते हैं लेकिन मुझे काम नहीं देते। तो मैं उनको कहता हूं अगर आप मेरा रिस्पेक्ट करते हैं तो मुझे काम भी दो। हाँ भी देना तो चाहिए, वॉइस तो इनकी बड़ी गोल्डन है।
हाँ, लेकिन अब टाइम हो गया, अब इनकी आवाज,
यानी अगर मेहदी हसन साहब 100 साल के भी हो जाते अब 100 साल में उनको कहते हैं भाई अब गाना बंद कर दो क्योंकि अब आप 100 साल के हो गए।
नहीं, कमर्शियल गाना बंद करते हैं, अब वैसे गाएं
नहीं, तो अगर उसकी आवाज ठीक है तो भाई आप उसको क्यों साइडलाइन किए हुए हो, गाना क्यों नहीं दे रहे उसको।
शायद जी मस्त
हमेशा दुश्मनों के साथ मिला कर
नौनिहाल पड़े।
अच्छा जनाब, मुमताज ممتاز جو ہے انہوں نے بھی جو ایکٹریس ممتاز جو ہے یعنی کہ عامر ممتاز نہیں یعنی کہ ممتاز ایکٹریس جو تھی ہندوستان کی وہ کہتی ہیں جی جن کی بڑی پیئرنگ چلتی تھی راجیش کھنہ کے ساتھ خاص طور پہ 1960s اور 1970s میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا جب بھی کبھی میں کوئی فلم دھرمندرا یا دیو آنند کے ساتھ کرتی تھی تو کاکا یعنی کہ راجیش کھنہ ناراض ہو جاتے تھے حالانکہ وہ بھی دوسری ہیروئنس کے ساتھ کام کرتے تھے میں تو کبھی سلک نہیں کرتی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے میں اس کو اون کرتا ہوں اور بڑا میرا خیال کرتے تھے اور ان کی جب بھی جوڑی جو ہے دوسری ایکٹریسز جیسے کہ شرمیلا ٹیگور کے ساتھ ہوتی تھی تو میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی اور شرمیلا ٹیگور جو ہیں وہ بے تحاشا پڑھی لکھی اور سوفسٹیکیٹڈ ہے اور میرا ان کے لیے بڑا رسپیکٹ ہے اور میں نے تو 8 سال کی عمر میں کام شروع کر دیا تھا تو میں نے تو جو کچھ سیکھا انڈسٹری میں آ کے سیکھا جبکہ شرمیلا ٹیگور صاحبہ جو ہیں وہ تو بہت پڑھ لکھ کے اور پھر آئی تھی تو شی از ویری سوفسٹیکیٹڈ جیسے میں نے ابھی کہا تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہے اللہ کی بلیسنگس کی وجہ سے لیکن پھر بھی کاکا کے ساتھ میری کبھی کوئی فلم فلاپ نہیں ہوتی تھی لیکن شرمیلا جی کے ساتھ ان کی بہت ساری فلمیں فلاپ بھی ہوتی تھیں واٹ از دس گوئنگ آن ٹھیک ہے جی اچھا جناب بالی ووڈ کے اندر کس کس نے اپنا نک سیدھا کروایا ہے جی یعنی کہ بوتی کس نے سیدھی کرائی ہے آج اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ٹپنیاں دی ہیں ہولے ہولے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے اچھا جی سب سے پہلے تو جو پریانکا چوپڑا تھی آپ کو پتا ہی ہے جب وہ مس ورلڈ بنی تھی 2000 کے اندر یہ ہم تصویر دکھا رہے ہیں ان کی جو ہیں یہ آپ دیکھیں کہ پہلے جب انہوں نے جیتا تھا تب کیسی شکل تھی اور ابھی کیسی شکل ہے تو انہوں نے کہا تھا جی ہاں میں نے پولی پیکٹومی کرائی تھی یعنی کہ ایک سرجیکل پروسیجر تھا جس میں کہ میرا نیزل کیویٹی لیکن میڈم نیزل کیویٹی نہیں آپ نے اور بھی بہت سارا کام کروایا آپ کی شکل پہ بالکل جو نظر آ رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ خراب ہو گیا تھا میں بڑی ہارٹ بروکن تھی پھر میرے والد جو تھے ڈاکٹر اشوک چوپڑا انہوں نے کہا نہیں نہیں تم کریکٹو سرجری کراؤ تو مجھے لگتا ہے بہت ساری کریکٹو سرجریز آپ نے کرائی ہیں بہرحال وہ مانی ہے کہ میں نے کچھ تو کرایا اس کے ساتھ ساتھ ریمی سینتی انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہاں جی میں نے فلرز اور بوٹاکس اور بی آر پی کرائی تھی لیکن کوئی میجر پلاسٹک سرجری نہیں کرائی تھی اسی طرح کافی وتھ کرن میں انوشکا شرما جب آئی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا جی میں نے لپ انہانسمنٹ کرایا تھا باجی آپ نے بھی کافی کچھ کرایا ویسے 2000 میں شلپا شیٹی جو آئی تھی انہوں نے کہا تھا جی میں نے اپنا نوز فکس کرایا باجی آپ نے بھی کافی کچھ کرایا ہے آپ کے تو جو ایک بامبے کے سرجن ہیں ہم کو تو ان کے بارے میں بھی بڑی اسٹوریاں پتہ ہیں تو خیر ہم ادھر ریویل نہیں کرنا چاہتے ہیں جی کیونکہ وہ آف دا ریکارڈ تھی وہ ہم ایئر پہ نہیں بتا سکتے تو جی بہرحال کچھ یہ مان گئی ہیں آنے والے دنوں میں اور جب کچھ مانیں گی تو پھر ہے میں آپ کو بتائیں گے نیدرلینڈ جو ہے جی اب پیرس اولمپکس کے جو فیلڈ ہاکی کا فائنل ہے وہ جرمنی کے ساتھ کھیلے گا کیونکہ جرمنی نے آج سیمی فائنل میں 3-2 سے انڈیا کو ہرایا اور فائنل میں وہ پہنچا اور یہ جو ہے اس کے لیے جرمنی کے لیے ایٹ لیسٹ بہت بڑی جیت ہے کیونکہ وہ 2012 میں آخری بار جو ہے وہ اولمپکس کے فائنل کے اندر پہنچے تھے اور انہوں نے گولڈ ون کیا تھا اس کے بعد سے کافی انہوں نے جرمنی نے ٹرائی کی اور یہ ہاکی میں گولڈ نہیں جیت سکے تو اب یہ ڈچ ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے جس کو کہ ابھی تک کوئی بھی ان کے جو لاسٹ 2 ناک آؤٹ سٹیجز میں کوئی گولڈ نہیں ملا ہے تو ایسے ہے جناب یہ بڑی بہت بڑی بات ہے جرمنی کے لیے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں وہ پی سی بی نے اپنا 17 ممبر اسکواڈ جو ہے فار 2 اپ کمنگ ٹیسٹ اگینسٹ بنگلہ دیش جو ہے اس کا آج اناؤنسمنٹ کیا ہے یہ میچز پنڈی اور کراچی میں ہوئیں گے فرسٹ ٹیسٹ اگست 21 سے 25 کے بیچ میں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوئے گا سیکنڈ والا اگست 30 سے سپٹمبر 3 کے بیچ میں کراچی میں ہوئے گا ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ شروع ہوئے گا اگست 11 کو پنڈی اسٹیڈیم میں ریڈ بال ہیڈ کوچ جو ہیں جیسن گلسپی اور اسسٹنٹ کوچ جو ہیں اظہر محمود وہ ان کو سپروائز کریں گے بنگلہ دیش کی ٹیم اسلام آباد پہنچے گی اگست 17 کو اور یہ بھی اسی شام سے ٹریننگ شروع کر دیں گے پاکستان کی ٹیم کو لیڈ کریں گے شان مسعود سعود شکیل جو ہیں گے ان کے وائس پریزیڈنٹ رہیں گے اور انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے شاہین شاہ آفریدی سے کیونکہ ان کا ورک لوڈ کم کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے میچز جو ہیں وہ اب آنے والے ہیں اگست 2024 سے اپریل 5 2025 کے بیچ میں جس میں پاکستان 9 ٹیسٹ 14 ٹی 20 17 او ڈی آئیز کھیلے گا 17 پلیئرز جن کو پک کیا ہے فار فرسٹ ٹیسٹ سیریز اس میں 13 جو ہیں وہ پاکستان کی جو سیریز تھی اگینسٹ آسٹریلیا ان دسمبر جنوری 2023-24 اس کے اندر انوالو تھے محمد ہریرا کامران غلام محمد علی کو ایوارڈ کیا گیا ان کی بہت زبردست پرفارمنسز کی وجہ سے ایٹ ڈومیسٹک سرکٹ اینڈ ان پاکستان شاہینز اس کے علاوہ نسیم شاہ نے بھی 13 مہینوں کے بعد جو ہے وہ کم بیک کیا ہے کرکٹ کے اندر ٹھیک ہے جی شری لنکا نے بھی جناب بڑی ہسٹری کریٹ کی ہے انہوں نے ہندوستان کو بائی لیٹرل او ڈی آئی سیریز جو تھی اس میں ہرایا ہے 27 ایئرز کے بعد کے بعد چیریت اسلنگا جو ہے وہ اپنی ٹیم کو شری لنکا کو لیڈ کر رہے تھے اینڈ ہی ڈیفیٹڈ روہت شرما لیڈ ٹیم بائی 110 رنز ان تھرڈ او ڈی آئی ایٹ کولمبو. انہوں نے سیریز جو ہے 2-0 سے جیتی ہے. پہلا میچ ٹائی رہا تھا, سیکنڈ میچ بھی انہوں نے انڈیا کو ہرایا تھا بائی 32 رنز اور آج 110 رن سے ہرایا. یہ جو ہے آج کا جو میچ تھرڈ او ڈی آئی تھا اس میں یہ چیز کر رہی تھی انڈیا کی ٹیم 249 کا ٹارگٹ 138 رنز پہ ان 26.1 اوورز ان کو انہوں نے آؤٹ کر دیا. روہت شرما نے سکور کیا 35 آف 20 بالز, واشنگٹن سندر نے 30 آف 25 بالز. اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹر جو ہے وہ 20 رنز کو کراس نہیں کر سکا انکلوڈنگ مائی فرینڈ اچھا جی خیر شری لنکا کے جو ڈونیت ولگے ہیں انہوں نے 5 وکٹس والا لاگے انہوں نے جناب 5 وکٹس لیں فار 40 رنز اور ہی ہیز بیکم دا فرسٹ اسپنر ٹو گیٹ 5 وکٹس ان او ڈی آئی اگینسٹ انڈیا. فرسٹ ٹائم سنس 1997 کے انڈیا ہیز فیل ٹو ون این او ڈی آئی سیریز ان شری لنکا. اس سے پہلے وہ ہمیشہ شری لنکا میں جیتتے تھے. اور جناب اب ہم شروع کریں گے.
اچھا ہم پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اسپورٹس کی خبریں کرتے ہیں, ٹاپ آف دی آور کا بریک لے لیتے ہیں اور پھر ہم اسپیشل رپورٹ کرتے ہیں اور میڈلز کی بات کر لیتے ہیں. سمر اولمپکس 2024 پیرس میں جاری ہیں اور آج جو ہیں وہ میڈلز کی پوزیشن کچھ ایسی ہیں کہ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ 27 میڈل لے کر گولڈ میڈل لے کر ٹاپ پر ہے. اس کے بعد پیپلز ریپبلک آف چائنا گولڈ ان کے پاس 25 ہے یعنی 25 گولڈ ہیں. دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر آسٹریلیا 18 گولڈ کے ساتھ, چوتھے نمبر پر ہوسٹ کنٹری فرانس 13 گولڈ کے ساتھ یہ چوتھے نمبر پر ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کینیڈا جناب 6 گولڈ کے ساتھ اب بھی 11ویں پوزیشن پر ہی ہم رکے ہوئے ہیں.
واہ 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 واہ,
اور ابھی تک پوزیشن ہلی نہیں ہے لیکن پیچھے سے آئرلینڈ بہت تیزی سے آ رہا ہے.
چھوٹا مارکس کو نیچے پھینکو,
دیکھتے ہیں جناب کچھ سازش کرتے ہیں خلاف. اور کل یعنی کہ 8 اگست کو ہمارے ارشد ندیم صاحب جو ہیں جناب ساری ہماری نظریں دعائیں اور نظریں اور بیسٹ وشز ارشد ندیم کے لیے. کل وہ کھیلیں گے فائنل اپنا اور ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے میڈل لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, چلیں جناب اب ایسا کرتے ہیں کہ ٹاپ آف دی آور کا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اسپیشل رپورٹ ہے بنگلہ دیش کی جو ایک حسینہ ہے.
ایک حسینہ تھی
آپ تو تھی ہو گئی چلی گئی تو وہ حسینہ جو ہے